एकात्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही असाधारण जीवन की कहानी में उतर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा असाधारण मन की।
जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की आत्मकथा मेरी संक्षिप्त कहानी, अंग्रेजी में माई ब्रीफ हिस्ट्री। और दिलचस्प बात यह है कि ये अकेली ऐसी किताब है जो पूरी तरह उन्होंने मतलब खुद लिखी है बिना किसी और की मदद के।
बिल्कुल, और यही बात इसे खास बनाती है। इसमें हमें उनके अपने शब्द मिलते हैं, उनके अनुभव सीधे उन्हीं की जुबानी।
तो हम स्टीफन हॉकिंग को एक महान वैज्ञानिक के तौर पर तो जानते ही हैं, ब्रह्मांड विज्ञानी, कैम्ब्रिज में वो लुकासियन प्रोफेसर।
जी, वो पद जो कभी न्यूटन के पास था।
हाँ, लेकिन ये किताब हमें उस इंसान से मिलवाती है जो इन सब उपलब्धियों के पीछे था, उनकी अपनी भावनाएं, उनके संघर्ष, उनकी जीतें, और निजी जीवन का संघर्ष, खासकर वो मोटर न्यूरॉन रोग ALS जिसे कहते हैं, उसके साथ उनकी लड़ाई, ये कैसे जुड़े हुए थे।
बिल्कुल, ये किताब यही दिखाती है कि कैसे एक जिज्ञासु लड़का, जिसे सिर्फ 21 साल की उम्र में कह दिया गया कि भाई तुम्हारे पास जीने के लिए 2 ही साल हैं, वो न सिर्फ दशकों तक जिया, बल्कि हमारे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की समझ को हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ फिजिक्स की इक्वेशन नहीं है,
नहीं,
ये प्यार, हानि, चुनौतियां और उम्मीद की कहानी है।
तो चलिए आज कोशिश करते हैं हॉकिंग के जीवन और उनके विचारों के सार को पकड़ने की, जैसा उन्होंने खुद बताया इस कहानी में। शुरुआत से शुरू करते हैं, उनके बचपन से।
हाँ, हॉकिंग का जन्म हुआ 1942 में,
अच्छा,
इंग्लैंड में, द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद। और उनका परिवार, जैसा वो खुद बताते हैं, थोड़ा विलक्षण था, एक्सेंट्रिक जिसे कहते हैं।
अच्छा,
हाँ, पर बहुत बौद्धिक। पिता मेडिकल रिसर्चर थे, माँ भी काफी तेज दिमाग वाली थीं, सेक्रेटरी थीं, तो घर का माहौल ऐसा था जहाँ ज्ञान और बहस, उनको बहुत महत्व दिया जाता था।
तो शायद वो जिज्ञासा की नींव वहीं पड़ी।
बिल्कुल, बचपन से ही वो चीजें कैसे काम करती हैं इसे लेकर बड़े उत्सुक थे। वो लिखते हैं कि कैसे वो घड़ियां खोल देते थे, रेडियो खोलकर देखते थे कि भाई अंदर क्या चल रहा है। और ये सिर्फ मशीनों तक नहीं था, वो ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ ये सवाल भी पूछते थे।
लेकिन स्कूल में कैसे थे वो?
वो खुद को एक औसत छात्र बताते हैं, कहते थे काम अक्सर बेतरतीब होता था।
अरे वाह।
हाँ, और ये दिलचस्प है कि उनके दोस्त और कुछ टीचर उन्हें मजाक में आइंस्टाइन बुलाते थे, शायद उनकी वो बिखरी हुई प्रतिभा देखकर ही।
हो सकता है।
गणित और भौतिकी में रुचि धीरे धीरे आई। पिता तो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, पर हॉकिंग ने कहा नहीं, मुझे तो फिजिक्स पढ़नी है। ऑक्सफोर्ड चले गए।
पिता की इच्छा के खिलाफ?
जी
ये भी एक तरह से उनकी अपनी सोच को दिखाता है।
जी,
ऑक्सफोर्ड का अनुभव 1959 से 1962 उनके लिए शुरू में थोड़ा बोरिंग था।
बोरिंग?
ऑक्सफोर्ड,
हाँ, वो लिखते हैं कि पढ़ाई उन्हें हास्यास्पद रूप से आसान लगी। मतलब दिन में मुश्किल से 1 घंटा पढ़ते थे।
क्या बात है।
तो अकेलेपन से बचने के लिए और कुछ करने के लिए वो कॉलेज बोट क्लब में कॉक्सवैन बन गए। नाव चलाने वाले नहीं,
हाँ, वो जो नाव को दिशा देता है,
जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है।
बिल्कुल।
लेकिन फिर जब कैम्ब्रिज जाने की बात आई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तब उन्हें लगा कि अरे, फर्स्ट क्लास डिग्री तो चाहिए।
अच्छा, तब थोड़ी सीरियसनेस आई।
हाँ, तब उन्होंने थोड़ी गंभीरता दिखाई, और उनका वो मौखिक परीक्षा वाइवा का किस्सा तो बड़ा मशहूर है।
हाँ, सुना है। गए कैम्ब्रिज PhD के लिए।
जी, शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही, थोड़ा खोया हुआ सा महसूस कर रहे थे। उनके सुपरवाइजर थे डेनिस सियामा, उन्होंने काफी प्रेरित किया। लेकिन इसी दौरान कुछ और भी शुरू हो रहा था।
क्या?
उनके शरीर में अजीब लक्षण दिखने लगे, अनाड़ीपन, चीजें हाथ से छूट जाना, बोलने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत।
हो।
और फिर आया वो पल, 21 साल की उम्र में वो भयानक निदान, मोटर न्यूरॉन रोग, ALS।
एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे मतलब मांसपेशियों पर कंट्रोल खत्म कर देती है।
हाँ, और डॉक्टरों ने कहा जिंदगी के लिए सिर्फ 2 साल है, कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं।
ये सुनकर तो कोई भी टूट जाए, उस निराशा से निकलकर वो जबरदस्त वैज्ञानिक प्रेरणा तक पहुंचना, ये कैसे हुआ? किताब में क्या बताते हैं वो?
वो लिखते हैं कि 2 बातें खास रहीं। एक तो अस्पताल में उन्होंने एक लड़के को ल्यूकीमिया से मरते देखा, उन्हें लगा शायद उनकी हालत उतनी बुरी नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ था, वो था जेन वाइल्ड से मिलना और प्यार हो जाना।
अच्छा,
वो साफ लिखते हैं, जेन से सगाई ने उन्हें जीने के लिए कुछ दिया,
एक
एक ठोस वजह मिल गई। दिमाग तो तेज था ही, अब उसे एक लक्ष्य मिल गया। दुनिया पर अपनी छाप छोड़नी है और जल्दी छोड़नी है।
प्यार ने जीने का मकसद दिया, ये सच में छू लेने वाली बात है। और इसी नई ताकत के साथ वो अपने रिसर्च में लग गए।
हाँ बिल्कुल, एक नई अर्जेंसी के साथ उन्होंने गणितज्ञ रॉजर पेनरोज के साथ काम शुरू किया। पेनरोज ने दिखाया था कि तारे कैसे ढहकर ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी बनाते हैं।
सिंगुलैरिटी मतलब वो बिंदु जहां घनत्व अनंत हो जाता है, जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं।
बिल्कुल, हॉकिंग ने इसी आइडिया को लिया और इसे उल्टी दिशा में लगाया पूरे ब्रह्मांड पर।
अच्छा, मतलब अगर ब्रह्मांड को पीछे रिवाइंड करें तो सब कुछ एक बिंदु में सिमट जाएगा।
हाँ, उन्होंने मिलकर ये साबित किया कि अगर आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत सही है तो ब्रह्मांड की शुरुआत जरूर एक सिंगुलैरिटी से हुई होगी।
बिग बैंग थ्योरी के लिए ये तो बहुत बड़ा सबूत था।
जी हाँ, इसने हॉकिंग को भौतिकी की दुनिया में एक पहचान दी।
और निजी जीवन में भी, जेन से शादी हुई 1965 में, बच्चे हुए?
हाँ, 3 बच्चे हुए, रॉबर्ट, लूसी और टिमथी। और वो ये मानते हैं पूरी ईमानदारी से कि उनकी बीमारी का परिवार पर, खासकर जेन पर, बहुत भारी बोझ था।
ये स्वीकार करना भी बड़ी बात है।
बिल्कुल, जेन का साथ बहुत महत्वपूर्ण था और शायद उनका वैज्ञानिक काम वो उनके लिए एक मानसिक शरण भी बन गया था। एक ऐसा यूनिवर्स जिसे वो अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते थे, जबकि उनका शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था।
फिर आया 1970 का दशक और ब्लैक होल्स पर उनका गहरा काम, और 1974 का वो मशहूर यूरेका मोमेंट।
हाँ, वो शायद उनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज थी। तब तक यही माना जाता था कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, रोशनी भी नहीं।
हाँ, यही तो पढ़ा है।
लेकिन हॉकिंग ने ब्लैक होल के किनारे पर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वहां क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियम लागू किए। मतलब बहुत छोटे कणों की फिजिक्स।
क्वांटम मैकेनिक्स और ब्लैक होल का किनारा, ये कॉम्बिनेशन ही कमाल का है।
क्या नतीजा निकला?
नतीजा चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते।
क्या?
हाँ, क्वांटम प्रभावों की वजह से वे बहुत धीरे धीरे कण और रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन।
हॉकिंग रेडिएशन,
इसका मतलब था कि ब्लैक होल धीरे धीरे अपना वजन खोते हैं और अरबों खरबों साल में पूरी तरह भाप बनकर उड़ सकते हैं।
अविश्वसनीय, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बंद तिजोरी में एक छोटा सा सुराख ढूंढ लिया हो। क्या खूब कहा, बिल्कुल वैसा ही। और ये इतना बड़ा धमाका इसीलिए था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने गणितीय रूप से मॉडर्न फिजिक्स के दो सबसे बड़े पिलर्स को एक साथ जोड़ा था।
आइंस्टाइन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स।
जी हाँ, ये दो सिद्धांत पहले एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। शुरुआत में वैज्ञानिक जगत में काफी शक था, जाहिर है, पर हॉकिंग अपने गणित को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे।
इसने तो उन्हें दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में ला खड़ा किया होगा। लेकिन चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई थी। 1985 में एक और बड़ा झटका लगा।
हाँ, 1985 में स्विट्जरलैंड गए हुए थे, वहां उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने जेन से लाइफ सपोर्ट हटाने तक की बात पूछी।
ओह गॉड।
पर जेन ने मना कर दिया। जान बचाने के लिए डॉक्टरों को एक इमरजेंसी ट्रेकियोटमी करनी पड़ी।
ट्रेकियोटमी मतलब गले में वो छेद बनाना सांस लेने के लिए।
सही, इस ऑपरेशन ने जान तो बचा ली, लेकिन उनकी बोलने की जो थोड़ी बहुत क्षमता बची थी वो भी हमेशा के लिए चली गई।
ये तो बहुत बहुत बड़ा झटका रहा होगा।
हाँ, बहुत हताशा भरा दौर था। वो सिर्फ भौंहें उठाकर अक्षर बताकर बात करने की कोशिश करते थे। बहुत धीमा, बहुत मुश्किल।
सोचकर ही मुश्किल लगता है। फिर वो आवाज कैसे मिली जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है?
वो समाधान टेक्नोलॉजी से आया। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने इक्वलाइजर नाम का एक प्रोग्राम बनाया। स्क्रीन पर शब्द चुनकर वाक्य बना सकते थे।
अच्छा।
बाद में इसे उनकी व्हीलचेयर से जोड़ा गया और एक स्पीच सिंथेसाइजर लगाया गया जो उन चुने हुए शब्दों को आवाज देता था।
और इस तरह मिली वो थोड़ी रोबोटिक लेकिन जानी पहचानी आवाज।
हाँ, उन्होंने मजाक में कहा भी कि अमेरिकन लहजा उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि वो उनका ट्रेडमार्क बन गया था।
क्या विडंबना है, अपनी असली आवाज खोकर उन्हें एक ऐसी आवाज मिली जो विश्व स्तर पर पहचानी गई।
हाँ।
और इसी दौरान उन्होंने वो किताब लिखी जिसने उन्हें घर घर पहुंचा दिया, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम।
हाँ बिल्कुल, उसी समय के आसपास। उनके मेडिकल खर्चे बढ़ रहे थे, बच्चों की पढ़ाई थी, पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने फैसला किया कि आम लोगों के लिए ब्रह्मांड विज्ञान पर एक किताब लिखेंगे।
और नतीजा?
नतीजा अभूतपूर्व था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक जबरदस्त इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसने हॉकिंग को अकादमिक दुनिया से निकालकर एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया।
उनकी पूरी कहानी सुनकर ना कुछ खास बातें, कुछ मूल दर्शन जैसे बार बार उभर कर आते हैं। जैसे आपने कहा, उनकी शारीरिक सीमाएं बढ़ती गईं, लेकिन उनका मानसिक संसार वो फैलता गया। ये पदार्थ पर मन की विजय वाली बात कितनी सच लगती है।
बिल्कुल, उनकी बुद्धि वही उनका असली औजार बन गई, उनकी शरण स्थली, उनकी आजादी का जरिया। लेकिन ये विचार शक्तिशाली तो है, पर क्या किताब में वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये सिर्फ उनके अकेले दिमाग की जीत नहीं थी? मतलब जो शारीरिक और भावनात्मक सहारा उन्हें मिला, जेन, नर्सेज, टेक्नोलॉजी।
ये बहुत जरूरी सवाल है।
हाँ, और वो इस बारे में काफी स्पष्ट हैं। किताब में वो आभार जताते हैं, खासकर शुरुआती सालों में जेन के प्रति। मन की पदार्थ पर विजय का मतलब ये नहीं कि शारीरिक सच्चाई को नकार दिया, बल्कि ये कि उन्होंने अपनी पहचान और अपने काम का केंद्र कहाँ रखा, वो विचारों का असीम ब्रह्मांड था, भले ही उनकी भौतिक दुनिया सिकुड़ रही थी।
और उद्देश्य और आशा की शक्ति, वो निदान के बाद निराशा से आशा की ओर जाना, जेन का प्यार, परिवार, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की वो धुन, ये सब उन्हें लड़ने की वजह देते रहे। उनका वो कहना, जब तक जीवन है आशा है।
बिल्कुल, और उनकी जिज्ञासा वो कभी खत्म नहीं हुई। बचपन में घड़ियां खोलने से लेकर सब कुछ का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ एवरीथिंग की आजीवन खोज तक, वो मानते थे कि ये मौलिक सवाल पूछना, हम कहाँ से आए, ब्रह्मांड क्यों है, यही हमें इंसान बनाता है।
और उनका हास्य, किताब में जगह जगह उनका वो सूखा, कभी कभी खुद पर किया गया मजाक झलकता है।
हाँ, वो बहुत जरूरी था शायद, सिर्फ उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बल्कि मुश्किलों से जूझने का एक तरीका भी, और लोगों से जुड़ने का भी, ताकि लोग उन्हें सिर्फ दया की नजर से ना देखें।
किताब में कोई उदाहरण है इसका?
कई है, जैसे वो सिंथेसाइजर के अमरीकी लहजे को रखने वाला मजाक, या जब उन्हें पहली बार व्हीलचेयर मिली तो उन्होंने लिखा कि कैसे वो उसमें तेजी से घूमने और लोगों के पैर कुचलने के लिए बदनाम हो गए थे। ये हल्कापन, ये उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा था।
उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि निजी और पेशेवर जिंदगी कैसे कैसे जुड़ी होती हैं, अलग अलग नहीं होती।
सही कहा, बीमारी ने शोध में अर्जेंसी लाई, परिवार ने स्थिरता दी, किताब लिखने का फैसला आर्थिक जरूरत से आया, और उनका लचीलापन वो तो अद्भुत था। आवाज गई तो नई आवाज मिली, हाथ से लिख नहीं सकते थे तो दिमाग में समीकरणों को देखने की नई क्षमता विकसित की।
उन्होंने अपूर्णता को भी स्वीकार किया, ये नहीं कहा कि मैं शुरू से ही जीनियस था, माना कि स्कूल में औसत थे, जीवन में गहरे अवसाद के पल आए, उनके कुछ वैज्ञानिक विचार बाद में बदले भी।
हाँ, ये दिखाता है कि प्रगति हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होती।
अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो उनके जीवन में कुछ ऐसे पल लगते हैं जिन्होंने वाकई सब कुछ बदल दिया, तीन निर्णायक मोड़ कह सकते हैं। पहला तो जाहिर है, वो 21 साल की उम्र में मिला ALS का निदान।
निश्चित रूप से, वो पल जब उन्हें बताया गया कि उनके पास सिर्फ 2 साल है, वो शुरुआती निराशा, लेकिन फिर जेन के प्यार और दुनिया पर छाप छोड़ने की इच्छा ने उसे एक जबरदस्त प्रेरणा में बदल दिया। वो मौत की सजा नहीं, जीवन बदलने वाली प्रेरणा बन गई।
और दूसरा बड़ा मोड़, शायद वो 1974 का यूरेका मोमेंट, जब उन्हें समझ आया कि ब्लैक होल काले नहीं होते।
बिल्कुल, वो क्रांतिकारी एहसास कि ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसने फिजिक्स के 2 महान स्तंभों को जोड़ा, गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स। इसने ना सिर्फ यूनिवर्स की हमारी समझ बदली, बल्कि हॉकिंग को वैज्ञानिक इतिहास में अमर कर दिया, भले ही शुरुआत में लोगों ने शक किया।
और तीसरा मोड़, क्या वो 1985 में आवाज का जाना और फिर उस सिंथेसाइजर के जरिए एक नई प्रतिष्ठित आवाज पाना होगा?
हाँ, मेरे ख्याल से वही, क्योंकि इसने सिर्फ उनके बात करने के तरीके को नहीं बदला, बल्कि उनकी सार्वजनिक छवि को भी गढ़ा। वो आवाज उनकी पहचान बन गई, और इसी के बाद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आई, जिसने उन्हें ग्लोबल पहचान दी, तो एक व्यक्तिगत त्रासदी अप्रत्याशित रूप से उनकी वैश्विक पहुंच का जरिया बन गई।
हॉकिंग की कहानी से हम आम लोग क्या सीख सकते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? एक बात तो ये लगती है कि अपनी सीमाओं को हम खुद परिभाषित करते हैं।
हाँ, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सीमाएं, वो हमारी क्षमता तय नहीं करती। हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहां हम कुछ कर सकते हैं, बजाय इसके कि जो नहीं कर सकते उस पर रोते रहें।
और मनोवैज्ञानिक लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, जिंदगी तो अप्रत्याशित है ही, चुनौतियां आएंगी।
बिल्कुल, उन्हें आखिरी दीवार मानने की बजाय ऐसी समस्याएं मानना
जिनके रचनात्मक समाधान निकालने हैं। हॉकिंग ने यही तो किया हर बार।
अपनी क्यों को जानना भी जरूरी है, मतलब आपका मकसद क्या है। एक मजबूत उद्देश्य मुश्किलों में टिके रहने में मदद करता है। हॉकिंग के लिए वो परिवार और ब्रह्मांड विज्ञान था। हम सब सोच सकते हैं कि हमारी असली प्रेरणा क्या है।
और जिज्ञासा को जीवित रखना, ये भी एक बहुत बड़ा सबक है। हॉकिंग ने कभी सवाल पूछना बंद नहीं किया। सीखते रहना, चीजों को यूं ही मान ना लेना।
हाँ, और जटिल विचारों को सरल बनाना, एक लेखक के तौर पर उनकी सफलता का एक बड़ा राज ये भी था। वो गहरे वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचा पाए। ये किसी भी फील्ड में एक बहुत बड़ा गुण है।
सही कहा। और शायद आखिर में वर्तमान क्षण में जीना। 50 साल से ज्यादा एक लाइलाज बीमारी के साथ जीने ने उन्हें समय का एक अलग नजरिया जरूर दिया होगा। अपनी नश्वरता को जानते हुए भी हर दिन को उद्देश्य के साथ जीना।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमें 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक सबक, तो वो क्या होंगी? पहली, भावनात्मक अंतर्दृष्टि क्या लगती है आपको?
मेरे लिए सबसे गहरी भावनात्मक सीख ये है कि प्यार और एक मकसद, चाहे वो निजी हो या वैज्ञानिक, वो हमें विनाशकारी परिस्थितियों का सामना करने और असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने की अविश्वसनीय ताकत दे सकते हैं। जेन के प्रति उनका प्यार और प्रतिबद्धता और ब्रह्मांड को समझने की उनकी वो धुन, वो असल में निराशा को आशा और उपलब्धि में बदलने वाले इंजन थे।
और बौद्धिक अंतर्दृष्टि?
बौद्धिक रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का दिमाग शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मन सचमुच ब्रह्मांड की विशालता की थाह ले सकता है, भले ही शरीर एक कुर्सी तक सीमित हो। उनका काम, खासकर हॉकिंग रेडिएशन, ये दिखाता है कि मौजूदा सोच को चुनौती देने से कैसे गहरे सत्य उजागर होते हैं। ये सच में पदार्थ पर मन की विजय का प्रमाण है।
बिल्कुल। और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक जिसे हम सब अपने जीवन में उतार सकें,
वो है जिज्ञासा का महत्व। जैसा हॉकिंग ने कहा, सितारों को देखो, अपने पैरों को नहीं। बड़े सवाल पूछने का साहस रखना, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन और हास्य का इस्तेमाल करना, और शिकायत करने में वक्त बर्बाद करने के बजाय उस पर ध्यान देना जो आप कर सकते हैं। ये जीने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।